है उन्नीस नौ चौसठ की साकार वर्ग रिकॉर्ड चला है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। अभी गिरते ही रहेंगे अंत तक,
संभलना ही संभलना
है, संभलना ही संभलना है, है। कुछ तो कहना पड़ता है, उस हिसाब से ओम शांति कहना अच्छा है। आत्मा को अपना स्वधर्म बताना होता है, मिलते जुलते हैं तो दुआ सलाम तो करते हैं, मतलब कुछ तो कहना पड़ेगा। तो ओम शांति कहना अच्छा है ताकि हम एक दूसरे को क्या याद दिला सके कि हम सब शांत स्वरूप आत्मा है। पहली आवश्यकता ये है सारे संसार की, क्या कि हम सब आत्मा आत्मा भाई भाई शांत स्वरूप आत्मा हैं, ये हमारा स्वधर्म है। आत्मा का पहला धर्म क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप। बाप भी कहते हैं हम शांत हैं। कौन से बाप कहते हैं, साकार या सदाशिव?
साकार
सदाशिव कहते हैं हम शांत हैं, लेकिन वो तो नीचे आया हुआ है, वो भी क्या कहता है हम शांत हैं, शांत देश के रहने वाले हैं। तो क्या हम आत्माएं शांत देश की रहने वाली नहीं है? हम आत्माएं भी शांत देश की रहने वाली है, लेकिन वो स्थिति बनाने की बात है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, लेकिन हम अशांत अशांत न हो। तो कहेंगे कि हम कहाँ के वासी हैं? शांति धाम के वासी। तुम आत्मा अशांत आत्माएं हो, हम शांत देश के रहने वाले हैं। तुम्हारा स्वधर्म शांत है, सारी दुनिया शांति शांति कहती रहती है, परंतु शांति किसको कहा जाता है यह कोई नहीं समझते। किसको कहा जाता है, है? हाँ, शांत माना कुछ भी होता रहे, हमारी स्थिति अशांत न होने पाए। देहवान होगा तो अशांति होगी, जब अपने को डिटैच कर लिया कि हम तो इसे पार्थिव शरीर से अलग आत्मा है, तो शांति स्थिति हो सकती है। समझते हैं कि ये लड़ना झगड़ना जो चलता है वो शांत हो जाए तब हम शांत हो, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा बढ़ता रहेगा या कम होगा?
बढ़ता
तो बढ़ता ही रहेगा। फिर क्या करना है, दुनिया में तो लड़ाई झगड़ा शांति बढ़ती रहेगी, लेकिन हम अपने को संयत कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं आत्मा समझ के। परंतु वो शांति तो कोई काम की नहीं, जिसमें सन्यासियों मिसल जंगल में चले जाएं और हम अपन को समझ लें कि हम शांत स्वरूप आत्मा है। असली परीक्षा कब होगी आत्मा की, जब अशांत स्थिति हो, अशांत वातावरण हो, और उस अशांत वातावरण में भी हम शांत होकर के दिखाएं। पुराने पुराने भी ज्ञान में चलने वाले बैठे हुए और चल रहे हैं ज्ञान में, और नए नए भी चल निकल रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो पुराने ज्ञान में चल रहे हैं वो उस स्टेज को पकड़े पकड़े हुए होंगे اور جو نئے نکلے ہوئے ہیں وہ نہیں پکڑ سکتے. تو پور جنموں کا حساب کتاب ہے. جس نے پور جنموں میں زیادہ دوسروں کو اشانت کیا ہوگا اور خود بھی دھمال مچایا ہوگا, اشانت رہا ہوگا, تو گیان میں آنے کے بعد جلدی شانتی کی اسٹیج کو نہیں پکڑ سکے گا, بھلے کتنے بھی سال سے چل رہا ہو گیان. تو سمجھتے ہیں کہ یہ لڑنا جھگڑنا جو چلتا ہے وہ شانت ہو جائے, پرنتو شانت واتاورن میں شانتی سمجھنا, شانت رہنا, یہ شانتی کوئی کام کی نہیں. گھر میں استری پرش ہوتے ہیں, کوئی تو جھگڑتے ہیں, کوئی نہیں جھگڑتے ہیں, تو وہ شانتی ہوئی کیسی شانتی؟ وہ نیچرل شانتی ہوئی کیا؟ شانتی اور چیز, شانتی آتما کا سودھرم ہے, مانا. آتما اگر اشانت ہوتی ہے تو اپنے دھرم سے, اپنی دھارنا سے نیچے گر گئی. کس آدھار پر؟ کوئی نہ کوئی سنگ کا رنگ کا آدھار بنایا ہوا ہے تو سنگ کا رنگ لگ جاتا ہے, واتاورن سے, ویکتی سے پربھاوت ہو جاتی ہے. باپ کا بھی سودھرم شانت ہے. آتما کا باپ کون ہے؟ جس کا سودھرم سدا شانت ہے, پرم پتا پرماتما. صرف پرماتما بھی نہیں, کیا کہا؟ اس سے پہلے ٹائٹل لگا ہے پرم پتا, جس کا کوئی پتا ہوتا ہی نہیں. ایسا کون ہے جس کا کوئی پتا ہی ہوتا نہیں؟ سپریم سول شیو, جو آتماؤں کا باپ ہے اس کا کوئی پتا نہیں ہوتا. پرجا پتا کا پتا ہوتا ہے, ساکار میں پتا ہوتا ہے. ساکار جو جنم لیا ہے اس جنم کا پتا ہو سکتا ہے, لیکن آتما کا پتا اس کا بھی ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ وہ پرم پتا ہے. پرجا پتا کا بھی کوئی پتا ہے آتمک روپ میں. تو پرم پتا پرماتما ان کا دھرم کیا ہے؟ ان کا بھی دھرم ہے شانت. پرم پتا پرماتما شانت دیش میں رہنے والا ہے, ہم بھی شانت دیش میں رہنے والے ہیں. کوئی بھی آوے بولو تمہارا سودھرم تو شانت ہے نا. پہلے کیا یاد دلانا ہے؟ کوئی بھی نیا نیا ملتا ہے تو پہلے پہلے اس کو یاد دلانا ہے تمہارا سودھرم تو شانت ہے نا, تم اصل وہاں کے رہنے والے ہو. کہاں کے؟ شانت دیش کے رہنے والے ہو. یہاں آئے ہو پارٹ بجانے, شریر دوارا پارٹ تو بجانا ہی ہے. شانتی کے لیے واسطہ میں جنگل آدی میں جانے کی درکار نہیں ہے. آتما کو اپنا سودھرم کا پتا ہے. آتما تھک جاتی ہے تو رات کو اشریری ہو شانت ہو جاتی ہے, تبھی آتما شانت ہو جاتی ہے. کیا رات کو سونے کے بعد کوئی سپن میں اٹھ کے دوڑنے نہیں لگتے ہیں, چلانے نہیں لگتے ہیں, رونے نہیں لگتے ہیں؟ روتے ہیں کہ نہیں؟ روتے ہیں تو ان کو شانت کہیں گے؟ اس سمے شانت نہیں کہیں گے. ڈیڈ سائلنس ان کی رہتی ہے, سپن اوستھا میں بھی نہیں آئے تو ان کو کہیں گے سسپت اوستھا. سپن آتے ہیں, سپن میں بھی دو استھتی ہوتی ہے, ایک اچھا سپن جس میں آتما کو خوشی ہوتی ہے اور دوسرا दुःस्वप्न जिससे आत्मा को दुख फील होता है, और तीसरी स्टेज, तीसरी स्टेज भी है, कौन सी? स्वप्न भी नहीं होता है, डेड साइलेंस जैसी स्थिति भी नहीं होती है, क्या होता है? जोर से घर्राटे मारते हैं, सबको जगा देंगे, वो है तामसी स्टेज। तो बोला आत्मा थक जाती है तो रात को अशरीरी हो शांत हो जाती है, रात को कितना सन्नाटा रहता है, सुबह होते ही आवाज शुरू हो जाता है, वो ही हद की दिन रात, आदि है बेहद का दिन और बेहद की बात, बेहद की रात। कैसे? अभी बेहद का दिन और रात की बात कैसे है? संगम युग चल रहा है, संगम युग में बेहद की रात और दिन की बात कैसे है? जब निश्चय है तो बेहद का दिन है, ब्रह्मा का दिन हो गया, हम ब्रह्मा की औलाद अपन को समझते हैं, और जब अनिश्चय हो जाता है तो उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं, श्रीमत के बरखिलाफ चल पड़ते हैं, तो उसको कहेंगे रात हो गई। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाए थक जाती है, इसलिए कहते हैं वापस शांति धाम जाना है। बाप भी कहते हैं शांति धाम और सुख धाम को याद करो, किसको किसको याद करो? शांति धाम को याद करो और सुख धाम को याद करो, और बाप को याद न करे है? तो तीन को याद करें, या सुख धाम को याद करें, या शांति धाम को याद करें, या दो को याद करें, या एक को याद करें, तो तीन को याद करें। ये क्या बात हुई? एक में तीनों समय हुए हैं,
तीनों में
सुख धाम में बाप समाया हुआ है, पहले तो हमारी स्टेज बने शांत अवस्था की, शांति का अगर हमने अनुभव न किया और हमारे नजदीक आने वाली आत्माओं ने शांति का अनुभव न किया, हमने निसंकल्पी स्टेज का अनुभव न किया और हमारे वाइब्रेशन के अंदर जो भी आत्माएं आए उन्होंने भी निसंकल्पी स्टेज का अनुभव न किया, तो हमारी संपन्न स्टेज नहीं बन सकती। तो पहली प्राथमिकता है कौन सी प्राप्ति की? कि हम शांत अपने को अनुभव करें, इसलिए कहते हैं वापस शांति धाम जाना है। बाप भी कहते हैं शांति धाम और सुख धाम को याद करो, सुख धाम में बैठ थोड़े ही याद किया जाता है, क्या याद कहाँ करना है? शांति धाम में भी बैठ के याद नहीं किया जाता, वो भी संपूर्ण शांति नहीं है कि शांत जगह में बैठ गए फिर याद कर लिया, और सुखधाम में बैठ करके कोई याद करे वो तो वहां होता ही नहीं, सुखधाम में किसी को याद करने की दरकार होती नहीं, क्यों? नियम क्या बना है? दुख में सुमिरन सब करे, स्मरण दुख में आता है और सुख में कोई याद नहीं करता, तो याद किया जाता है दुख धाम व शांति धाम में। तो अब बाप कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा हुआ है, तुमको घर चलना है, फिर तुम्हारे लिए शांति भी है और सुख भी है। अशांत रावण कहलाता है, क्या अशांत? चाहे हम अशांत हैं, चाहे हमारे सामने वाला अशांत है, तो कौन है? रावण। अशांत रावण कहलाता है, बाप कहते हैं बच्चे गिरना है और संभलना है। इस समय की ही बात है। किस समय की? जब तक ये संगम चल रहा है, संगम माना शांत और अशांत का संगम, कलयुग और सतयुग का संगम, दुख और सुख का संगम, फिर जब स्वर्णिम सतयुग में पहुंच जावेंगे, स्वर्णिम युग में पहुंच जावेंगे, संपन्न स्टेज बन जाएगी आत्मा की, तो दो बातों नहीं रहेंगी फिर, गिरना खत्म। फिर क्या होगा? फिर उस स्टेज में रहने की बात अनुभव होगी, अतीन्द्रिय सुख। जो गायन है गोप गोपियों से पूछो, वो एक बार अंत समय में आरंभ हो जाएगा तो फिर 2500 वर्ष तक कायम रहेगा। तो बाप कहते हैं बच्चे गिरना है और संभलना है, इस समय की बात है। जितना बाप को याद करेंगे तो माया नहीं गिरावेगी। क्या? उनकी याद जाती होगी तो माया गिरावेगी।
और अतेंद्र सुख रुद्रमाला के को भी मिलता है ना?
इंद्रियों का सुख लेते रहेंगे तो कैसे मिलेगा? है? रुद्रमाला के मणकों को तब ही मिलेगा जब इंद्रियों का सुख लेना बंद करें। ऐसा हो सकता है कि इंद्रियों का भी सुख लेते रहे और इंद्रिय सुख भी अनुभव करते रहे? एक ही बात होगी, दोनों हाथों में लड्डू। इसलिए रुद्रमाला पीछे रह जाती है। रुद्रमाला तैयार तो पहले होती है, लेकिन रुद्रमाला के मणकों को फिर विजयमाला में, जिन्होंने विजय पाई है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के ऊपर, उन विजयमाला के मणकों में ऐड किया जाता है। अच्छा तुम बैठो थोड़ी देर। क्या? किनको कहा जाता है? तुम थोड़ी देर बैठो, बाद में तुमको उठाते जाएंगे और फिर ऐड करते जाएंगे। संपूर्ण स्टेज बनने के बाद, संपूर्ण स्टेज बनने के बाद कहीं ऊपर नीचे होता है? फिर तो अतीन्द्रिय सुखी होगा, इंद्रिय सुख की बात होगी नहीं। तो जितना बाप को याद करेंगे तो माया नहीं गिरा देगी। माया कब तक गिरा रही है? जब तक हम बाप को छोड़ करके कोई दूसरे की विचारी याद में डूबते रहते तब तक माया गिराती है। जब हमारी याद अभिविचारी हो जाएगी, एक से प्रीति लग जाएगी, फिर माया गिराना बंद करेगी। तो माया कल्याणकारी हुई या कल्याणकारी हुई? कल्याणकारी है ना, नफरत तो नहीं आती, नफरत नहीं आती। बाबा की याद भूले तो माया कोई न कोई प्रकार से गिरा देगी। संभालने और खड़े होने की बात है, कदम कदम पर संभलना है। क्या? जो भी काम हम काम करने के लिए कदम उठाएं, उसमें हमें ध्यान रखना है। क्या करना है? संभलने का ध्यान रखना है। कोई तो ऐसे भी है बूचड़ी, क्या सोचते हैं कि जितना गिरेंगे उतना चढ़ेंगे। कहाँ गिरेंगे? संगम युग में गिरेंगे। अगर संगम युग में गिरते रहेंगे तो फिर उठेंगे कब? तो संभलने और खड़े होने की बात है, कदम कदम पर संभलना है। खुद पंडा है बाबा। क्या? कहाँ ले जाने वाला पंडा है? शांति धाम और सुख धाम ले जाने वाला है बाबा के बाप, परम पिता। सुख धाम ले जाने वाला नहीं है, कौन है? बाबा। बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो पंडा है बाबा, तुम्हारा नाम ही रखा है पांडव, जैसे ब्रह्मा की औलाद एक मात्रा बढ़ गई ब्राह्मण, विष्णु की औलाद वैष्णव, शिव की औलाद शैव, एक मात्रा बढ़ गई ना बच्चे के अर्थ में, तो ऐसे ही पंडा के बच्चे पांडव, तुम्हारा नाम रखा है पांडव, तो पांडवों का भी काम क्या हुआ, खुद भी यात्रा करें और दूसरों को भी अनुभव कराएं कि शरीर में रहते हुए भी हम कैसे शांत रह सकते हैं और सुख का भी अनुभव कर सकते हैं। तुम पंडों की सेना है क्या, किसकी सेना है, पंडों की सेना है, फिर नाम पांडव रख दिए है, हो तुम पंडे, बाप भी कहते हैं मैं पंडा हूँ, तुम लोगों को वापस सच्ची यात्रा पर ले जाने आया हूँ। शांति धाम का पंडा एक बनता है व उनके बच्चे बनते हैं, एक से तो काम नहीं होगा क्या, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, कितनी बड़ी सेना है, सभी का रुख है शांति धाम की तरफ, वो है परे के परे धाम, बद्रीनाथ है अमरनाथ है जाना कोई दूर नहीं है, वहां जाना तो बहुत सहज है क्या, जो भक्ति मार्ग का बद्रीनाथ है अमरनाथ है वहां जाना बहुत सहज है, लेकिन ज्ञान मार्ग का अमरनाथ क्या है, है
निश्चय में रहना,
हाँ सदा ही निश्चय बुद्धि बन करके रहना, जैसी अमरनाथ बाप की स्टेज है वैसी स्टेज में हम भी स्थिर हो जाएं, सदैव ऊंची स्टेज बनी रहे, कभी नीची स्टेज न हमको अनुभव हो न हमारे संगी साथियों और देखने वालों को अनुभव हो। तो बोला उस अमरनाथ बद्रीनाथ में जाना वो कोई बड़ी बात नहीं, वो दूर नहीं है, वहां जाना बहुत सहज है, लेकिन कठिन कहाँ है, है बाप समान स्टेज बनाना ये कठिन बात, कठिन राजयोग है या सहज राजयोग है, है तो सहज राजयोग, लेकिन अंतर कब पड़ता है, जब है जब एक बाप दूसरा न कोई इस स्टेज से नीचे आ जाते हैं, अब विचारी याद में विचारी याद समाई जाती है तो कठिन हो जाता है, अगर अब विचारी स्टेज बनी रहे तो कैसा रहेगा रास्ता, सहज रास्ता रहेगा। अच्छा बताओ मूल वतन सूक्ष्म वतन जाना सहज है या बद्रीनाथ अमरनाथ जाना सहज है, बोलो तुम जाना सहज है, तो अभी तक पहुंच गए होते 70 साल क्यों घिसते रहे ना, है कोई ब्राह्मणों की दुनिया में से कोई पहुंचा क्यों, सूक्ष्म वतन मूल वतन वहां पहुंच गया कोई कि पहुंच के वापस आ जाते हैं, सूक्ष्म वतन मूल वतन नजदीक है या अमरनाथ बद्रीनाथ नजदीक है, देखने में तो मूल वतन सूक्ष्म वतन परे से परे है, अमरनाथ पर आदि अमरनाथ आदि पर जाना तो जट रेल में बैठ करके पहुंच जाएंगे, परंतु वास्तव में मूल वतन सूक्ष्म वतन में जाना वास्तव में देरी नहीं लगती है, बुद्धि की लाइन क्लियर है तो 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं, सेकंड की बात है बहुत परे से परे भी है और नजदीक से नजदीक भी, ये क्या बात हुई, या तो बहुत दूर होगा या बहुत नजदीक होगा, दोनों बातें कैसे हो सकती हैं, अगर आत्मिक स्टेज पक्की है, बुद्धि की लाइन क्लियर है तो नजदीक है, बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, बुद्धि इधर उधर देहदारियों में स्थूल वस्तियों में फंस रही है, अटैचमेंट में है, तो बहुत कठिन है, दूर है, तो बहुत परे से परे भी है और नजदीक से नजदीक भी है, टाइम नहीं लगता है। तुम सिर्फ बुद्धि से याद करो, वो जिस्मानी यात्रा है तो कोई नई बात नहीं है, आधा करती है यात्राएं करते आए, ये रूहानी यात्रा तुमको एक ही बाप आकर के कराते हैं। क्या क्या कहा? रूहानी यात्रा एक ही बाप यहाँ आकर के कराते हैं और जिस्मानी यात्राएं अनेक देहदारी गुरु कराते रहते, बाहर की दुनिया में ही या ब्राह्मणों की दुनिया में भी, ब्राह्मणों की दुनिया में भी अनेक देहदारी गुरु हैं, जो क्या कहते रहते, चलो माउंट आबू हम तुम्हें स्वर्ग के दर्शन कराएं, शांति धाम सुखधाम दिखाएं, समझाए नहीं सकेंगे लेकिन क्या कहेंगे, चलो दर्शन कराए लाए, अनुभव कराए लाए शांति धाम सुखधाम का, लेकिन इसमें कहीं किसी को भटकाने की दरकार नहीं है। तुम हो सिकीले बच्चे, तुमको एक ही बाप आकर के ये रूहानी यात्रा कराते हैं। क्या कहा? तुमको कहने वाला जिसको तुमको कह रहा है वो बच्चे कितने होंगे, थोड़े माने कितने है? वो थोड़े बच्चे कितने होंगे जिनको रूहानी बाप, एक ही रूहानी बाप रूहानी यात्रा कराता है, साढ़े चार लाख, और उनमें प्रवेश करने वाले साढ़े चार लाख, टोटल कितने हुए, नौ लाख आत्माओं को एक ही रूहानी बाप है जो यात्रा करा। तुम हो शिकील दे बच्चे, क्या उनमें भी तुम हो, बहुत सिख सिख से बहुत लंबे समय के बाद मिले हुए, यज्ञ जब शुरू हुआ था तब भी तुम मिले थे, क्या और अब भी मिल रहे हो, तो कितने हुए सिख सिख से मिले हुए शिकील ने बच्चे कितने हुए,
बहुत थोड़े,
बहुत थोड़े, कितने, साढ़े चार लाख या नौ लाख, साढ़े चार लाख, नौ लाख नहीं, क्यों साढ़े चार लाख जन्म लेंगे तब मिलेंगे, और तुम साकार में अभी मिलते हो, तुम हो शिकील दे बच्चे, तुमको तो रास्ता बताना है, तुम मंदिरों में जाकर समझाओ, क्या तुम्हारा काम है गिरजाघर और मस्जिद में जाकर के समझाने का काम नहीं है, कहाँ जाकर समझाओ, मंदिरों में जाकर समझाओ, और मस्जिद में जाके समझाने लगे तो कोई मिस हो जिद करने वाली है तो वहां सुनेंगी नहीं, मंदिरों में जाकर तुम समझाओ ये देवी देवताएं कब राज्य करते थे, क्या समझाओ, क्या समझाओ, ये देवी देवताएं मंदिर में मूर्तियां रखी हुई हैं, ये कब राज्य करते थे, इनके सर के ऊपर छत्र लगा हुआ है, सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तो ये राज्य कब करते थे, एक्यूरेट जवाब दे पाएंगे, भक्त लोग इस बात का एक्यूरेट जवाब नहीं दे पाएंगे, कहेंगे त्रेता युग में राज्य करते थे राम सीता, लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे सतयुग में, इतना तक तो बताएंगे, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है त्रेता में राम का राज्य और सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, लेकिन सतयुग त्रेता कब था तो पता नहीं, बता नहीं पाएंगे, लक्ष्मी नारायण के मंदिर आदि में तो बहुत नजदीक रखे हुए हैं मूर्तियों के रूप में, अमरनाथ के मंदिर कितना दूर रखा है, क्या कहा, ये अंतर क्यों है, वो भी शहर में जाओ, लक्ष्मी नारायण का मंदिर शहर के अंदर होगा और शिव के मंदिर जितने भी पुराने मंदिर हैं शिव के वो सब शमशान घाट में होंगे या शहर के बाहर होंगे। ऐसे क्यों रखते हैं है? देवताओं के मंदिर शहर के अंदर क्यों और शिव का मंदिर शहर से बाहर क्यों होता है? आत्मिक स्टेज के लिए, माने देवताओं की आत्मिक स्टेज नहीं होती है, देह अभिमानी होते हैं है? देवताएं देह अभिमानी होते हैं क्या? देवताएं देह अभिमानी तो नहीं होते थे? सही बात बताओ है? हाँ, देवताओं की उतनी ऊंची स्टेज नहीं होती जितनी रुद्र बाप और रुद्र बाप के जो रुद्रगण हैं उनकी जो ऊंची स्टेज बनती है वो देवताओं की ऊंची स्टेज नहीं बनती। माना वो कब होते हैं और वो कब होते हैं? देवताएं तब होते हैं जब सतयुग की उतरती कला शुरू हो जाती है और जो रुद्रगण है वो संगम युग में होते हैं। जो एक्यूरेट सतयुग है उसमें रुद्रगण नहीं होते। तो बोला लक्ष्मी नारायण के मंदिर आदि बहुत नजदीक रखे हैं, अमरनाथ का मंदिर कितना दूर रखा हुआ है? क्यों ना ऊंची स्टेज नहीं बताई, दूर रखा हुआ है अमरनाथ का मंदिर, दूर रखा हुआ है। माना सन 37 से ये यज्ञ शुरू हुआ, उस समय से पुरुषार्थ शुरू हो रहा है। उस समय नहीं कहेंगे अमरनाथ की स्टेज किसी की बनी। अमरनाथ जैसी ऊंची स्टेज बनाने के लिए कितना लंबा टाइम चाहिए? ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवताओं में अमरनाथ के स्टेज वाला देवता कौन सा? शंकर। उसका कार्यकाल भी तो कोई होगा ना कि तीनों देवताएं इकट्ठा कार्य करते हैं है? अलग अलग टाइम है, अलग अलग उनका पुरुषार्थ है। तो अमरनाथ तक पहुंचने में टाइम बहुत लगता है, दूर रखा हुआ है। शिव के मंदिर नजदीक भी रखे हैं और दूर भी रखे हैं। पुराने जितने मंदिर है वो सब दूर है, ढेर मंदिर बनाए हैं, समझाया गया है वो ही पतित पावन बाप है नंबर वन। क्या वो ही पतित पावन बाप है नंबर वन? बाकी औरों के मंदिर बनाने से क्या फायदा? औरों माने राम सीता का मंदिर बना दिया, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बना दिया, तो उनका मंदिर बनाने से फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हम ऊंची की ऊंची स्टेज वाला है उसको अगर याद करेंगे तो प्राप्ति कैसी होगी? ऊंचे से ऊंची प्राप्ति होगी। इसलिए गीता में लिखा हुआ है भूतों की पूजा करने वाले भूत योनि में जाते हैं। क्या जितने भी तांत्रिक हैं वो सब कौन बनते हैं? भूत प्रेत बनते रहते हैं। और जो देवताओं को याद करते हैं वो देव योनि में जाते हैं, और जो मेरे को याद करते हैं भगवान को वह बहुत ऊंची प्राप्ति करते हैं, भगवत लोक को प्राप्त होते हैं। तो कौन से लोक हुए? कितने लोक हुए? तीन लोक हुए। द्वापर युग से भूत प्रेतों की दुनिया शुरू होती है, और जब संगम युग 100 साल का पूरा होगा तब कौन सी दुनिया शुरू होती है? देवताओं की 16 कला संपूर्ण देवताओं की दुनिया शुरू होती है। और उससे पहले है 2036 से पहले, और जब शंकर की स्टेज संपन्न होती है, संसार में प्रत्यक्षता हो जाती है, निराकारी स्टेज, तब से लेकर के 2036 तक वो है अमरनाथ की स्टेज। अमरनाथ के कैसे बच्चे? अमर बच्चे। निश्चय बुद्धि विजय दी। बाकी औरों का मंदिर बनाने से कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि औरों का मंदिर बनाते रहेंगे, औरों को याद करते रहेंगे तो अवस्था कैसी होती रहेगी? ऊंची नीची होती रहेगी। और जो सदा ही शिव है, जिसकी सदैव ही ऊंची स्टेज होती है, उसको याद करेंगे तो हमारी भी स्टेज जल्दी ऊंची हो जाएगी। तो औरों के मंदिर बनाने से क्या फायदा? वो कोई सुख तो देते नहीं है, खुद नीचे गिरते हैं तो हमको भी, हमको नीचे गिरा देते हैं, माने देवताएं भी सदा आत्माभिमानी नहीं रहते। असुरों की तो, भूत प्रेतों की तो बात ही छोड़ दो, तो देवताओं को भी फॉलो नहीं करना है। किसको फॉलो करना है? एक बाप को। तुम पुजारी कोई सुख के लिए नहीं बनते हो क्या? तुम पुजारी किसके लिए बनते हो? हैं? तुम संत के लिए बनते? तुम पुजारी बनते हो एक शिव की प्राप्ति के लिए। तुम कोई स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, सुख के लिए पुजारी नहीं बनते हो। पूजा करते करते बहुत थक गए हो, अब फिर बाप आया है पुजारी से पूज्य बनाने, खुद तो पुजारी नहीं बनते हैं। कौन? बाप ना पूज्य बनता है और ना पुजारी बनता है। अगर बाप पूज्य बन जाए तो क्या नुकसान हो जाएगा?
पुजारी बनना पड़ेगा।
पुजारी बनना पड़ेगा? हाँ तो ठीक है, पुजारी बन जाए तो हर्जा क्या है? नहीं, हमको क्या नुकसान हो जाएगा अगर वो पूज्य और पुजारी दोनों बने?
हमारे को कौन पूज्य बनाएगा?
नहीं, हाँ अगर वो भी पुजारी बनता रहे और वो भी पूज्य भी बने, पुजारी भी बने, तो फिर हमको ऊंचा उठाने वाला कोई नहीं होगा। खुद तो पुजारी नहीं बनते हैं, तुम जानते हो हम पूज्य थे फिर हम पुजारी बने हैं, तो पुजारी का दर्जा कम हो जाता है। क्या? जो देवताएं पूज्य भी बनते हैं, पुजारी भी बनते हैं, उनका दर्जा कम हो जाता है। और ऊंचते ऊंच दर्जा किसका रहता है? जो सदैव एक रस अवस्था में लंबे समय तक टिकते हैं। 1964 की मुरली का दूसरा पेज, पूज्य ऊंचे है। क्या? पूज्य ऊंचे हैं, लेकिन क्या नहीं है? ऊंचते ऊंच नहीं है। बाप पूज्य बनाते हैं। क्या? रामकृष्ण को जिनकी पूजा होती है उनको ऊंच कौन बनाते हैं? बाप पूज्य बनाते हैं। तुम पूज्य देवी देवताएं थे, फिर पुजारी बन धक्के खाते आए हो, अब पूजा को छोड़ फिर पूज्य बनना है। क्या कहा? क्या डायरेक्शन मिला?
पूजा को छोड़ पूज्य बन जाते।
अब पूजा को छोड़ दो। किसकी पूजा छोड़ दे?
देहधारियों
की। जो पूज्य बनते हैं फिर पुजारी बनते हैं, उनकी पूजा छोड़ दो। अगर उनकी भी पूजा करते रहेंगे तो क्या करेंगे? संघ के रंग से फिर नीचे गिरा देंगे। तो आप पूजा को छोड़ फिर पूज्य बनो। क्या कहा? जिनकी भक्ति छूटी नहीं है वो पूज्य नहीं बन सकते। भक्ति छूटी नहीं है तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, और जब शरीर ही छूट जाएगा तो जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होगा। हाँ, पूज्य बनने में माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, और यात्राओं पर जाने से अथवा मंदिरों में सत्संग में जाने से कोई रोकता नहीं है। क्या कहा? इस ईश्वरीय ज्ञान की पहचान क्या है? ईश्वर से तो जो ज्ञान दिया जाता है और देवात्माएं जो ज्ञान देती है उसमें अंतर क्या बताया? कि ईश्वर का जो सच्चा ज्ञान है वहां जाने से रोका जाता है, विघ्न डाले जाते हैं, लेकिन औरों के ज्ञान में जाने से रोका नहीं जाता। यहां पुजारी से पूजी बनने में माया कितना हैरान करती है, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, बहुत करके गिरते हैं काम के खड्डे में। बाप कहते हैं अभी मूतपलिती मत बनो, क्या अभी उल्टा ज्ञान ना उठाओगे, जितना नीचे गिरेंगे उतना ऊंच चढ़ेंगे। अब अगर नीचे गिरेंगे तो एक बार माफ, दो बार माफ, हमेशा माफी थोड़े ही करते रहेंगे, फिर तो सजाएं शुरू हो जाएंगी, और जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा। बाप कहते हैं मूत पलीती मत बनो, इस मूत पलीती बनने से संभलना है, क्या कैसे संभलना है? मूत पलीती बनने से, कहेंगे हम का मूत पलीती बनते, हम तो विकार में ही तो जाते हैं, है? विकार में जाने में और मूत पलीती बनने में कोई अंतर है या नहीं है? एक ही बात है, मूत पलीती किसे कहा जाता है? है? अरे जो भ्रष्ट इंद्रियां हैं उनसे शक्ति छीण हो जाए तो क्या हो गया? मूत पलीती हो गया। अगर शक्ति छीण नहीं होती है तो उसे मूत पलीती नहीं कहेंगे। शक्ति छीण हो गई तो तन से छीण हो गई, माना मन जरूर पहले ही छीण हुआ पड़ा होगा, वाचा में भी कुछ न कुछ ऊपर नीचे होते रहते होंगे। मन से, तन से और संकल्प मात्र से पतन का अनुभव न करे, नीचे गिरने का अनुभव न करे, उमंग उत्साह बिल्कुल कम न होने पाए, तो मूत पलीती मत बनो, इनसे संभलना है, सबसे गंदा गिरना है काम विकार का, काम चिता में जलना जैसे सागर में गोते खाना। चलो कोई ऐसा है जो तन से पतित नहीं बनता है लेकिन मन से संकल्प वही चलाता रहता है पतित होने के, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे काम चिता में क्या हो रहा है, जल रहा है। विषय सागर में गोता खाना ये सबसे गंदा काम है, चाहे मन से गोता खाना और चाहे तन से गोता खाना। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है, गटर में गोते खाने का ख्याल कब नहीं करना है, जब जब ख्याल आता है तो संकल्प है बीज, ख्याल भी आया माने बीज बो दिया, और बीज बोया है तो उसका फल भी आगे पीछे निकलता है। कभी ख्याल नहीं आना चाहिए, मूत है ना, इससे पतित बन पड़ते हैं। ऐसे मत समझो यहाँ जो आते हैं तो उनों की बिख से बुद्धि निकल जाती है, ऐसे भी बेवकूफ है यहाँ, तो समझते हैं बड़ा भाई ज्ञान में बहुत होशियार है, इसकी बहुत देखभाल करनी चाहिए। कोई आया अच्छा अच्छा ज्ञान सुनाया, अच्छी अच्छी बातें सुनाई, बस आराम से घर में रख लिया, परिवार में अंदर गुजर लिया, फिर जब उसने अपने उल्टे सीधे कर्म बंदर पढ़ने की करना शुरू किए तो हम क्या जाने, हम तो समझते थे ज्ञान में चलता है इसलिए हमने रख लिया, तो आगाह कर दिया पहले से ही, क्या आगाह कर दिया है? ऐसे मत समझो यहाँ जो आते हैं तो उनों की बिक से बुद्धि निकल जाती है। कोई क्लास में कितना ही रेगुलर हो लेकिन ये विश्वास कभी नहीं करना है कि उसकी भिक्ष से बुद्धि निकल गई होगी। एक दो को देखते हैं तो अंदर तूफान चलता है गंदे बनने के लिए। वो अंदर की बात है, कोई बाहर से तो देखने में नहीं आती है। उस समय बाप कहते हैं कब गंदा नहीं बनना, कोई का पीछा नहीं करना है। क्या गंदा बनने के लिए कोई का पीछा नहीं करना है। एक दो में प्रेम किया खलास, क्या एक दो से लगाव लगाया और फिर गिरने से कोई बचाए नहीं सकता। तब गटर में गिरने का पुरुषार्थ मत करो। बाप इस बात से बचाते रहते हैं, बातें तो बहुत है, खुद भी लिखते हैं बाबा माया ने हमको गटर में गिराई दिया। बाप कहेंगे मुआ काला मुंह कर लिया, गटर में गिरा माना मुआ, मुआ माना मर गया, गटर में गिर गया माने एक बार तो अनिश्चय आ गया ना, अनिश्चय आया तो नीचे गिर गया। बाप कहेंगे मुआ काला मुंह कर दिया, तो गिराना गिरना और संभलना, गिरने की कितनी चटाबटी है। माया ने ऐसी चमाटमारी जो एकदम खत्म हो गया, मर गया, ये ड्रामा कहेंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ किसी के जीवन में तो उसको क्या कहेंगे, इसका ऐसा ही ड्रामा था, कुल को कलंक लगाते आते हैं। क्या वो भी कौन से कुल को, जो ईश्वरीय कुल है उसको कलंक लगाने वाले बन गए, कितने जाकर के गंदे बने। गंदा माया बनाती है, आधा कल्प दुख देने वाली माया है, बाप नहीं है। क्या कहा, आधा कल्प दुख देने वाली माया है, बाप नहीं। मुफ्त में दोष धर देते हैं, क्या धर देते हैं दोष, कि ईश्वर ही सुख देता है, ईश्वर ही दुख देता है, ईश्वर को बाप नहीं समझते। परमपिता कब किसको दुख कैसे देंगे, क्या ये अंदर से संकल्प चलता है, इतने हमको नीचे गिराया किसने, आखिर किसी के संकल्प चलता होगा तभी तो बोला। जिनके अंदर भी ये संकल्प चलता है, क्या ये बाप ही नीचे गिराता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो निश्चय बुद्धि आत्मा नहीं है। परमपिता कब किसको दुख कैसे देंगे, परमपिता दुख देवे तो बाकी मनुष्य तो एक दो में बड़ा ही दुख देने लग पड़ेंगे। जो ऊंचते ऊंचे है वो ऊंचते ऊंच काम करेगा, तब तो संसार में ऊंचते ऊंच गाया जाएगा। नीच काम करने वाले दुख देने वाले नीच कहे जाएंगे। बाप समझाते हैं तुम ही अपने लिए ऐसे कर्म बनाते हो, क्या
अपने लिए कर्म
तुम बनाते हो अपने लिए ऐसे कर्म, मैं किसी को नीच गिराने का निमित्त नहीं बनता हूँ। संग दोष में भी उल्टे कर्म कर लेते हो, बाप को भूल जाते हो, क्या कहा, अगर तुम उल्टा कर्म करते हो तो जब बाप को भूलते हो तब उल्टा कर्म करते हो, बाप की याद रहे तो उल्टा कर्म कब हो नहीं सकता, साधारण है ना, तो बच्चे भूल जाते। कौन है साधारण,
बाप
जो साधारण तन में आया है, तो जैसे दुनिया वाले लोग कर्म करते हैं ऐसा कर्म करने वाला बाप को भी समझ लेते हैं। साधारण बाप को साधारण रूप को देख करके उसे साधारण कर्म करने वाला समझने के कारण ऐसी भूल हो जाती है। बाप तो शिक्षा ही देंगे परंतु उसको भूल जाते हैं। बाप समझते हैं योग पूरा नहीं है, इसलिए बाप के ऊपर दोष धरते हैं। ऐसे मत समझो भाषण करने वाले हैं, पंडित की कथा है। क्या कथा है? पंडित की क्या कथा है? औरों को कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे और खुद
डूब गया।
खुद पार हो न सका, बीच में ही डूब गया। तो कौन हुआ पंडित?
राजा रामचंद्र बन गया।
राजा रामचंद्र जी
बन गया
है?
रामचंद्र बन गया।
रामचंद्र बन गया? बन जाएगा? नहीं
नहीं गया
ना। बन गया, अब नहीं बनेगा?
अब तो नहीं,
अब नहीं,
अब नारायण बनेगा।
अब नारायण बनेगा? अच्छा पक्का रखना।
चाहिए
बोले वोट ले आओ तो चले। कहा के राम नाम करने से, कहने से नदी पार हो जाएंगे, खुद पार हो न सका। क्या कहा?
वोट ले आओ,
वोट ले आओ तो हम चले। जो खुद कहता था वो कर न सका। सिर्फ कथन ही नहीं, क्या करनी में भी होना चाहिए। कथनी करनी रहनी रहन सहन सब में पास होना पड़ता है। इतनी ज्ञान का कोई बहुत अच्छा अच्छा सुनाता रहे और प्रैक्टिकल में फेल होता रहे तो उसको कोई मानेगा नहीं। इसलिए बाप को मत भूलो। बाबा अभूल बनाते हैं, माया अच्छे अच्छे महारथियों को भी नाक से पकड़ लेती है। क्या हाथ से क्यों नहीं पकड़ती है? माया हाथ से क्यों नहीं पकड़ती, नाक से क्यों पकड़ती है? जो खुद भिखारी होता है वो दूसरों को पहले उस नजर से ज्यादा देखता है। जो दूसरों को भी उस नजर से देखता है, सबको उसी नजर से देखता है, भगवान को भी उसी नजर से देखने लग पड़ता है। जो ईश्वरीय पार्ट है उसको भी काली आंख से देखने लग पड़ता है। तो बाप कहते हैं कि माया उसको नाक से पकड़ करके इनको खूब भटकाओ। महारथियों को नाक से पकड़ती है। क्यों? साधारण पुरुषार्थियों को नाक से नहीं पकड़ते हैं? किसी के ऊपर ज्यादा गुस्सा होता है ना, जैसे बंदर है, जब सांप को पकड़ लेता है मुड़िया तो क्या करता है, उसकी नाक जमीन से रगड़ेगा। तो किसी के ऊपर ज्यादा गुस्सा आता है तो उसे नाक से रगड़ाया जाता है। तो महारथियों को नाक से पकड़ लेती है और उनको पता ही नहीं पड़ता है। किनको? महारथियों को, कि हम कोई भूल करते हैं। बाप कहते हैं कोई भी भूल करो तो क्या करो है? पोता मेल झट लिखो और बाप से आकर माफी मांगो। आई एम सॉरी। समझो शिव बाबा कहते हैं ये तुम्हारी भूल है। अच्छा बाबा हम स्वीकार करते हैं, हमको क्षमा करो। ये भी अच्छे अच्छे बच्चों में फजीलत नहीं रहती है। क्या? कि कोई भूल हो जाए तो बाबा से आकर माफी ले ले। हमने इतनी कड़ी भूल की है, माफी तो मांगे, ये भी फजीलत नहीं रहती। अच्छे अच्छे बच्चों में वो भी फजीलत है ही नहीं। अपने को बहुत मियां मिट्ठू समझते हैं, पाप करते रहते हैं तो क्षमा तो लेनी चाहिए, नहीं तो इनकी वृद्धि होती रहेगी। बाप के साथ बुद्धि योग बड़ा अच्छा चाहिए। भले भाषण तो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं परंतु संपूर्ण तो कोई नहीं बना। क्या कोई अच्छा अच्छा भाषण करे तो कभी विश्वास नहीं कर लेना चाहिए कि ये संपन्न बन गया होगा। क्या क्या देखना है, क्या परखना है? कथनी के साथ करने और रहन सहन भी देखना है। बाप के साथ बुद्धि योग बड़ा अच्छा चाहिए। भल भाषण बहुत अच्छा करते हैं परंतु संपूर्ण कोई नहीं बना है, अंत तक गिरते और संभालते रहेंगे। क्या अंत? अंत सबका एक साथ होगा या अलग अलग होगा?
अलग
अलग होगा। फाइनल पेपर सबका एक साथ नहीं होगा? फाइनल होगा? नहीं होगा
नंबर वाला,
एक के बाद एक होगा
नंबर वाला, नंबर वाला
एक सेकंड का पेपर नहीं होगा, एक सेकंड का पेपर होगा, एक ही क्वेश्चन का पेपर होगा। तो बोला अंत तक गिरते और संभलते रहेंगे। बाबा से भूल होती है, कहते हैं बाबा हमसे भूल हो गई, आप हमको क्षमा करो। कौन से बाबा से भूल होती है और किससे क्षमा मांगते हैं? जो बाबा से भूल होती है, हाँ बाबा से भूल होती है, माना ब्रह्मा बाबा से भूल होती है, कहते हैं बाबा हमसे भूल हो गई। किसे कहते हैं? शिव बाबा से कहते हैं बाबा हमसे भूल हो गई, आप क्षमा करना। किसे कहते हैं? शिव बाबा। शिव बाबा उनके सामने होता है क्या? या होता था, या होता है, या होगा? है? होता है,
होगा,
होगा,
होगा।
कैसे?
आने वाले भविष्य,
जोर से बोलो,
आने वाले भविष्य।
कोई कहता है संकल्पों से होगा, है?
अभी तो वर्तमान समय संकल्पों की खेल,
संकल्पों का खेल है। प्रैक्टिकल में बाप नहीं, ब्रह्मा बाबा नहीं होगा जो साकार बाबा से माफी मांगे।
वो तो गलती करेगा ना, वो संपूर्ण ब्रह्मा है,
वो संपूर्ण ब्रह्मा है, वो गलती करेगा नहीं। संपूर्ण ब्रह्मा एक होता है या चार चार होते हैं?
सभी तो होते
हैं,
एक होता
है। हाँ, तो जो दादा लेखराज ब्रह्मा है, जिस समय मुरली चल रही थी उसकी बात हो रही है ना? वो दादा लेखराज ब्रह्मा कोई भूल करते हैं तो उनका मिसाल दिया कि बाबा से कहते हैं बाबा हमको क्षमा करो। वो तो उस समय की बात हुई, यज्ञ के आदि की हुई हो, लेकिन अब कैसे ये बात लागू होगी? हैं? हाँ, ब्रह्मा बाबा की सोल कोई में तो प्रवेश करके बड़ी माँ का पार्ट बजाती होगी ना? तो जिसने भी प्रवेश करके बड़ी माँ का पार्ट बजा करके संसार में जगदम्बा के रूप में पूज्य होती है, तो पूज्य पहले बनेगी या पहले क्षमा मांगती है? पहले क्षमा मांगती कि हमसे ये भूल हो गई। तो बाबा से भूल होती है तो कहते हैं बाबा हमसे भूल हो गई, आप हमको क्षमा करना। रहमदिल क्षमा करो। कौन रहमदिल? बाबा ने भूल की, बाबा से क्षमा मांगी, तो भूल वो रहमदिल कौन हुआ? है जो शिव बाबा है वो रहमदिल है, क्षमा का सागर है। रहमदिल क्षमा करो, भक्ति मार्ग में सारा दिन क्षमा क्षमा करते रहते। ये भी शूटिंग कहाँ की है? है संगम की। कैसे है? संगम में भी बार बार गलतियां करते रहते हैं भगत लोग। तुम सब भक्तियां हो, तुम सब सीताएं हो, तो सीताओं और भक्तियों में कोई अव्वल नंबर भी होगा कि नहीं होगा? है बार बार भूले करेगा, बार बार क्षमा मांगे। भक्ति मार्ग में सारा दिन क्षमा क्षमा करते रहते। बाप को कहते हैं क्षमा करो धर्मराज द्वारा, फिर डंडा नहीं खिलाना हमको क्या? इसलिए खबरदारी बहुत चाहिए। ऐसे मत समझो हम 16 कला संपूर्ण बन गए हैं। क्या ऐसे नहीं समझो? कोई कोई ऐसे भी होते हैं, क्या अहंकार आ जाता है कि हम तो संपूर्ण देवता बन गए? नहीं, बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा अशुद्ध स्वप्न आते हैं। क्या जब तक अशुद्ध स्वप्न आते हैं तब तक क्या साबित होता है कि आत्मा संपन्न नहीं बनी है, अशुद्ध संकल्प में रमण करती है। जैसे स्वप्न होंगे वैसे ही संकल्प जरूर आवेंगे। हाँ जी, तो बोला ऐसे ऐसे स्वप्न ख्याल आते हैं जो नींद भी नहीं फिट जाती है। بابا کی یاد نہیں ٹھہرتی. ہاں جی تو بولا ایسے ایسے سپن خیال آتے ہیں جو نیند بھی نہیں پھٹ جاتی ہے. بابا کی یاد نہیں ٹھہرتی. بچوں کو کہتا ہوں سب سے جاتی نمبر ون تو ہمارے پاس سپنا آدھی آتی ہے. کون سے بابا کہتے ہیں؟ ہاں برہما بابا بچوں سے کہتے ہیں سب سے جاستی نمبر ون تو ہمارے پاس سوپنا آتے ہیں. نمبر ون کیا آتے ہیں؟ سوپنا نمبر ون ہمارے پاس آتے ہیں. نمبر ون کیوں بتایا؟ نہیں نمبر ون سوپن کیوں کہا؟ تھرڈ کلاس سوپن کیوں نہیں کہا؟ فورتھ کلاس سوپن کیوں نہیں کہا؟ ہاں بابا کی کسی کے پرتی دربھاونا نہیں ہوتی تھی. سب کے پرتی شبھ سنکلپ ہوتا تھا. تو سوپن بھی کیسا آئے گا؟ شبھ سنکلپوں کا سوپن آتا تھا. تو کہا بچوں کو کہتا ہوں سب سے جاتی نمبر ون تو ہمارے پاس سوپن آدھی آتی ہے. سب سے آگے تو یہ بابا ہے نا. ان سے پوچھو مایا کتنا سامنا کرتی ہے. جب تک سوپن آتے ہیں تو سنکلپ ضرور چلتے ہوں گے, اور جب تک سنکلپ چلتے ہیں تب تک نراکاری اسٹیج نہیں بنی ہے. ان سے پوچھو مایا کتنا سامنا کرتی ہے. ایسے ایسے سوپن خیالات آتے ہیں جو نیند بھی پھٹ جاتی ہے, یاد میں نہیں رہتے. سمجھتے مایا ضرور بچوں کو بھی پکارتی ہوگی. تو بابا کہتے ہیں اس بابا سے پوچھو یہ رائے دیں گے. کون سے بابا کہتے ہیں؟ برہما بابا کہتے ہیں کہ میں نہیں بتا پاؤں گا, میں خود ہی پھنسا ہوا ہوں. برہما بابا کہتے ہیں میں خود ہی پھنسا ہوا ہوں. بابا سے پوچھو. کون سے بابا سے؟ شیو بابا سے پوچھو یہ رائے دیں گے. تم جتنا رستم ہوں گے اتنے طوفان آویں گے. جو کچھ تمہارے پاس آتے ہیں وہ میرے پاس بھی آتے ہیں. میں کوئی چھپاتا نہیں ہوں, سب بتلاتا ہوں. میاں منہ مٹھو نہیں بننا ہے. کیا؟ اپنے منہ سے میاں مٹھو نہیں بننا ہے. انت میں سولہ کلا سمپورن بنیں گے. ابھی کوئی بھی سولہ کلا سمپورن نہیں بن سکتا. ابھی تو بہت گرہن لگا ہوا ہے. کس کو؟ آتما کو. جو بھی آتمائیں ہیں آتما ماتر ان سب کو بہت گرہن لگا ہوا ہے. تمہاری وہ اوستھا آنی ہے. ابھی آئی آئی نہیں ہے. 1964 کی مرلی کا تیسرا دن. یہاں بیٹھے بیٹھے اڑتے رہیں گے. کیا کہا؟ کیسی اوستھا بن جائے گی؟
بیٹھے بیٹھے اڑیں گے.
یہاں بیٹھے بیٹھے اڑتے رہیں گے. اونچی اسٹیج کا انوبھو کرتے رہیں گے. آتما کو کھینچ ہوتی ہے کیونکہ آدھا کلپ کے تھکے ہوئے ہیں. تو آتر ویلا ہوتی ہے جلدی جاؤں. شانتی دھام پہنچنے کے لیے شانتی کی اسٹیج میں انوبھو کرنے کے لیے یہ آتر والا ویلا ہوتی ہے کہ میں آتما شانتی اسٹیج کا انوبھو کروں. پھر دکھی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ناک ہم نے گیان چھوڑا. پرنتو لائک بھی بننا پڑے. کوئی تو یہاں ہی گھومنے پھرنے جیور آدھے پہننے میں خوش ہو جاتے ہیں, پھر بہت دکھی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے نہا کہ یہ گیان کو چھوڑ دیا. اچھا پھر ہمت کرو کچھ سیکھو. اپکار کرنے والوں پر ہی اپکار کرنا ہے. پرنتو ایسے نہیں کہ اور ہی ماتھا خراب کرنے لگ پڑے. کیا ایسا اپکار نہیں کرنا ہے اپکار کرنے والوں پر جو اور ہی ماتھا خراب کرنے لگ پڑے. مایا گراتی ہے باپ اٹھاتے. منزل ہے اونچی और ये है सारी बुद्धियों की यात्रा। पुरुषार्थ टाइम लेता है, लक्ष्य तो बहुत सहज है, एक सेकंड में तुम जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हो। क्या कहा है? अधिकारी बन जाते हो, जीवन मुक्त नहीं बन जाते हो,
अधिकारी बन जाते हो।
क्या बन जाते हो? जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हो। जैसे राजाओं के घर में युवराज पैदा होता है, तो पैदा होते ही राजाई का अधिकारी बन जाता है, लेकिन राज्य धारी या राजा नहीं बन जाता है। उसके लिए क्या करना पड़े? उसे लायक बनना पड़े। तो बोला, एक सेकंड में तुम जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हो। एक बार बाबा कहा, फिर भूलते क्यों हो? निश्चय है बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, फिर गिरते क्यों हो? याद कर समझते क्यों नहीं हो? अच्छे अच्छे बच्चे भूल जाते हैं, उनसे और ही डिसर्विस होती रहती है। सर्विस भी गुप्त है, दुनिया को क्या पता? किसमें कोई भी भूत प्रवेश होगा, अशुद्ध सोल का प्रवेश है तो भी नुकसान कर देते, माया भी सोल प्रवेश कर लेती है, ऐसे भी ध्यान में जाने वाले हैं क्या? ध्यान दी जा वालों से बहुत बच के रहना है। कोई में सोल आती है तो पहचानेंगे कैसे? हाँ, उल्टी सुल्टी माना, दो तरह की बातें करेगी, अभी एक बात करेगी, अभी अभी उससे विपरीत दूसरी बात करने लग पड़ेगी। बल ज्ञान है परंतु परिपूर्ण कोई नहीं है, कोई न कोई खामी रहती है, तो डर रखना चाहिए। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है, अगर श्रीमत पर न चल कोई भ्रष्ट काम कर लिया तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा और सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी। कर्मों का फल यहाँ ही बड़ा कड़ा भोगना पड़ेगा, इसलिए कर्मातीत अवस्था का पुरुषार्थ करना है, बाबा के साथ बड़ा सच्चा रहना है। क्या क्या कहा? बाबा के साथ सच्चा रहना, और दुनिया के साथ झूठा रहे तो चलेगा? दुनिया के साथ दुनिया की तरह चले, दोनों तरफ तोड़ने वाली, ऐसा हो सकता है? बाबा के साथ बड़ा सच्चा रहना है, मैंने इशारा दे दिया। दुनिया वालों के साथ भले तुम उल्टे सुलटे धंधे करते रहो, झूठ बोलते रहो, लेकिन बाबा के सामने आकर सच्चाई में फर्क नहीं आना चाहिए। सबका शिव बाबा से कनेक्शन है, सेंटर से सब शिव बाबा के हैं। क्या भले अभी कोई अपना मान करके बैठ जाए, लेकिन लास्ट में क्या होगा? हाँ, सब सेंटर शिव बाबा के हैं। तुम्हारा सेंटर फिर कहाँ से आया जो तुम अपना मान के बैठ गए? तुम शिव बाबा के हो, ईश्वरीय विश्वविद्यालय बाप का है ना? मेरा ये सेंटर है, अगर ये ख्याल आया तो समझो ज्ञान में से मर गए। ऐसे मेरा मेरा करते करते कितने गिर पड़ते हैं क्या? जिसने अगर इस बात का प्रूफ दे दिया कि ये सेंटर मेरा है तो मर गया। क्यों? क्योंकि बाप कहते हैं मैं कभी किसी को निकालता नहीं हूं, निकालने वाली कौन है? माया निकाल के फेंक देती है। ऐसे मेरा मेरा करते करते कितने गिन पड़ते हैं, सब कुछ शिव बाबा का है। तुम कहते हो बाबा ये तन मन धन सब आपका है, तो बाबा भी कहते हैं स्वर्ग की राजा ये सारी तुम्हारी है, कितना ये बजा मिलता है। तुम क्या देते हो? मरने से पहले करनी घोड़ को देते हैं, मरने से पहले क्या करते हैं? करनी घोड़ को देते हैं, जीते जी दान कराते हैं, देखते हैं कि होपलेस केस है तो दान पुण्य कराए देते हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे जीते जी कर लो, کیا بچے اب تمہارا سب کا ہوپ لیس کیس ہو گیا ہے, اب تم کو کوئی بچائے نہیں سکتا, ہوپ لیس کیس ہو گیا ہے. تن من دھن اب ارپن کر لو, کرنی گور باپ آیا ہوا ہے. کرنی گور براہمن نہیں ہوتے, ان کو دیا جاتا ہے کہ نہیں, کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ بھکتی مارگ میں پرمپرا کہاں سے پڑی, یہاں سے کیسے है? अरे बाप क्या बन करके आया हुआ है, करनी घोर ब्राह्मण अघोर अघोरी कर्म करने वाला बाप आया हुआ है. ये तो बाप कभी गलत कर्म नहीं करते हैं, है? बाप तो कल्याणकारी है, कल्याण का ही काम करते हैं. अभी करनी घोर कहां से हो गया है? کرنی گھور بھی بن کر کے آتا ہے تو کس لیے آتا ہے؟ بچوں کے کلیان کے لیے. باپ بھی کہتے ہیں بچے جیتے جی کر لو, یہ پرانا تن ہے, تم آتما میری ہو, یہ شریر پارٹ بجاتے بجاتے اب پرانا ہو گیا ہے, اب پھر میرے بنو تو تمہاری آتما اور شریر دونوں شدھ بنیں گے. کیا کہا؟ تن سے اور من سے और तन के द्वारा कमाए हुए धन से अगर तुम मेरे बन जाओगे 100% तो उसका रिजल्ट क्या होगा? है? तुम्हारा शरीर भी यही इसी जीवन में शुद्ध हो जाएगा, अपवित्र शरीर पवित्र बन जाएगा, दोनों इकट्ठे साफ हो जाते हैं. इससे क्या साबित हुआ? आत्मा रूपी जो मन बुद्धि है वो भी यही इसी जन्म में पवित्र बननी है, और शरीर भी रिजुविनेट होना है, कंचन काया इसी जन्म में बनाना है. जो इसी जन्म में शरीर को और मन रूपी आत्मा को दोनों को संपन्न बनाएंगे उनको कहेंगे पक्का ब्राह्मण. देवताओं से भी ऊंची स्थिर. तो दोनों इकट्ठे साफ होते हैं, तन और मन. आत्मा जो अपवित्र बनी है उनको शुद्ध बनाना है, मेरे साथ योग लगाने से ही बनेंगे. योग रखेंगे तो चरती कला होगी, मेरे साथ योग नहीं रखेंगे तो गिरती कला हो जाएगी. सर्विस का शौक चाहिए, पूछना नहीं है बाबा हम सर्विस पर जावे, पूछते हैं ना बाबा हम सर्विस पर जावे. बाबा कहते हैं दान करने के लिए और सर्विस करने के लिए पूछ पूछ कर नहीं किया जाता. बाबा समझते हैं इनको शौक नहीं है. मनसा वाचा कर्मणा कोई न कोई सर्विस में लग जाना चाहिए. क्या कोई सर्विस पड़ी हुई है? सामने सर्विस पड़ी हुई है, कचरा पड़ा हुआ है तो पूछते हैं बाबा ये हम कचरा साफ कर दें? अरे ये पूछने के लिए दरकार है, कहने से करे? वो तो मनुष्य की कोटि में आ गया, जो बिना कहे करे वो देवता, और कहने से भी ना करे तो राक्षस. अब अपने अपने दिल से पूछो कि हम कौन सी कोटि में, क्या बनने वाले हैं? जो शास्त्रों में चेहरे दिखाए गए हैं, चित्र दिखाए गए हैं, उनमें हमारा चित्र कौन सा है? पूछना नहीं है, सर्विस पर जावे. बाबा समझते इनको शौक नहीं है. मनसा वाचा कर्मणा कोई न कोई सर्विस में लग जाना चाहिए तो उसका अजूरा जरूर मिलेगा. आप ही जो करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य, और कहने से भी न करे तो उनको भूख बसर कहा जाता है. जितना सर्विस करेंगे उतना फल मिलता है, तो आप ही करो ना. कोई भी बात में राय पूछनी है तो शिव बाबा कह रहा ब्रह्मा लिख करके पूछो. क्या माना? ब्रह्मा बाबा से भी ना पूछो. क्या ब्रह्मा बाबा से भी पूछेंगे तो वो भी मनुष्य मत दे सकते हैं. क्या करो? शिव बाबा कह रहा ब्रह्मा लिख करके पूछो तो झट राय मिलेगी, ये करो। शिव बाबा आए झट राय देंगे। शिव बाबा कहते हैं मेरे को हाथ है, पूछ के मेरे को हाथ है, इस तन में शिव बाबा बैठा है ना, तो जिस तन में शिव बाबा बैठा है तो उस तन में हाथ है या नहीं है, है? जगन्नाथ नहीं है वो, एक स्टेज अलग, जब उनका कोई सहयोगी नहीं होता। शिव बाबा आए झट राय देंगे। शिव बाबा कहते हैं मेरे को हाथ है, इस तन में शिव बाबा बैठे हैं ना, चिट्ठी लिखते हैं तो शिव बाबा लिखते हैं ना बच्चों को चिट्ठी, तो चिट्ठी लिखते हैं तो हाथ है या बिना हाथों के लिखते हैं, हाथ है। बैल को सारा दिन थोड़े ही सर्विस करावेंगे, मना बैल में हर समय सवारी नहीं की जाती। बैल जब थक जाते हैं तो उनकी आंखों में पानी आ जाता है, यहाँ तो आंसू आने की बात ही नहीं है, इनको तो सर्विस करनी है। बच्चों को समझाते हैं माँ मेकअप याद करो तो ये शिव बाबा कहते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है, ये तो बिल्कुल सहज है। बेहद का बाप ही है जो स्वर्ग का रचयिता है, क्या स्वर्ग का गेट माताओं के द्वारा खुलवाते हैं, लेकिन स्वर्ग का रचयिता कौन है? स्वर्ग का रचयिता बेहद का बाप है। बाबा आते हैं स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश करने। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, यादव कौरव पांडव भी है, तुम जानते हो अब खेल पूरा होता है। बाबा लेने आया हुआ है, सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, क्या बाबा जब लेने आया हुआ है शांति धाम अपने घर ले जाने के लिए, तो उस समय विकर्मों का बोझा सर के ऊपर बहुत है, याद नहीं करेंगे तो महारानी महाराजा नहीं बन सकेंगे। यह ही राजयोग न कि प्रजा योग, क्या कौन सा योग है? राजयोग है। अगर अभी भी प्रभावित होने वाली प्रजा बनते रहेंगे, मनुष्य आत्माओं से प्रभावित होते रहेंगे, भले कोई ऊंचे से ऊंचा देवता बनने वाला हो, तो कौन सा योग सीख रहे हैं? प्रजा योग। बाप तो राजयोग सिखाने आए हैं, योग पूरा नहीं लगाते हैं तो प्रजा बन पड़ते हैं। बाप से पूरा योग नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब दूसरों से देहधारियों से भी योग लगाते रहते हैं, तो जो देहधारियों से भी प्रभावित होते रहते हैं उनसे भी योग लगाते रहते हैं, उनको भी याद करते रहते हैं, तो प्रजा बन में चले जावेंगे, राजा ही का पद बाप से ले नहीं सके। योग पूरा नहीं लगाते हैं तो प्रजा बन पड़ते हैं, है तो राजयोग। कहते हैं बाबा हम पूरा वर्षा लेंगे, तो फिर सर्विस का शौक भी चाहिए। अगर पूरा वर्षा लेंगे, बाप से डायरेक्ट वर्षा लेंगे, राजाई का वर्षा लेंगे, राजकुल में आने का वर्षा लेंगे, माना 16,000 की लिस्ट में आना चाहते हैं, तो क्या करो?
सर्विस
का शौक चाहिए, ये नहीं पड़े पड़े तंडवा मार के सोते हैं, माना शौक नहीं है, अपने सुख का ज्यादा ध्यान रखते हैं। ईश्वरीय सेवा में भले नुकसान होता रहे उसका ध्यान नहीं रखेंगे। लिख कर पूछ भी सकते हैं, अगर इस समय मैं मर जाऊं तो क्या बनूंगा, क्या बच्चे पूछ सकते हैं बाबा से, क्या कि बाबा इस समय अगर मैं मर जाऊं तो क्या बनूंगा, तो बाबा क्या कहेंगे? हैं? इसके अंदर मर जाने का संकल्प आता है, इसका मतलब बाबा क्या समझेगा? हैं? एक तो प्रैक्टिकल में कोई मर जाए तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपघाती। क्या कहा जाता है? आपघाती माना सुइसाइड करने वाला, और जो सुइसाइड करने वाला है वो सबसे बड़ा पाप है। क्या इस ड्रामा में किसी का जीवन लेना और जीवन देना ये नुधा हुआ है, ईश्वर का काम कहा जाता है। किसी का जिंदगी लेनी और देनी ये मनुष्य का काम नहीं है। तो अपना जीवन लेना, अपना जीवन बर्बाद खत्म कर देना ये भी हमारा काम नहीं है। जो सुइसाइड करते हैं वो भूत प्रेत वाली आत्माएं, चलो करते नहीं है, उनके अंदर संकल्प आता है कि हम मर जाएं। तो संकल्प तो बीज तो है, संकल्प का बीज तो बोने वाले बन गए। अगर वो तीखा हो गया तो कर्मणा में भी आ सकता है, ये अच्छी बात नहीं है। कोई पूछते हैं हम क्या बनेंगे अगर अभी शरीर छोड़ जाए, परिपूर्ण तो अंत में बनेंगे। अभी तो तुम अपूर्ण हो, अभी शरीर छोड़ेंगे तो क्या बनेंगे, अधूरे देवता बन जावेंगे, कम कलाओं वाले देवता बन जावेंगे। जो कम कलाओं वाले देवता बनेंगे वो द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे और दूसरे धर्मों में भूत प्रेतों को मानते हैं, फरिश्ताओं की मान्यता करते हैं, लेकिन भारतवर्ष में फरिश्तों की मान्यता नहीं है। यहाँ तो देवी देवताओं को पूजते हैं जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं। 1964 की मुरली का चौथा पेज, अभी तुम अपूर्ण हो, अपनी अवस्था जांच करनी है। हम कितना बाबा की सर्विस पर हैं, कितना आज्ञाकारी और वफादार हैं, कितना तड़पता हूँ कि कोई को जाकर जीए दान दूं। बेचारे बहुत दुखी हैं, अंधे हैं, गुरुओं ने तो सत्यानाश कर दिए। क्या
गुरुओं ने सत्यानाश
सबको क्या बना दिया है, सबको अंधा बना दिया है। अगर गुरु मर गया तो फिर जो गुरु गद्दी पर बैठेगा उनको गुरु कर लेते हैं। ब्राह्मण दुनिया में भी क्या करते हैं, एक ब्रह्मा गुरु बन गए, मर गया तो किसको गुरु बना दिया, दीदी दादियों को गुरु बना देते हैं। और अगर ऐसा एडवांस पार्टी में भी होने लगे तो क्या कहेंगे, हो सकता है कि नहीं?
नहीं,
नहीं, नहीं हो सकता, एडवांस पार्टी में नहीं हो सकता। ऐसी बीज रूप आत्माएं यहाँ नहीं होंगी जो देहधारियों को गुरु बनाएंगी है? अगर ऐसी आत्माएं न होती फिर तो सब धर्मों से माला तैयार हो जाए, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की माला क्यों बनती है? माला किसकी बनती है, सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों की माला बनती है जो पूजी जाती है। तो बोला गुरुओं ने तो सत्यानाश कर दी है, चाहे वो गुरु बाहर की दुनिया के हो, चाहे वो गुरु ब्राह्मणों की आधारमूर्त दुनिया के हो, और चाहे वो एडवांस पार्टी के गुरु हो, जो बाप से बुद्धियों को तोड़वाते हैं और अपनी पूजा करवाते हैं तो वो सत्यानाशी गुरु है। अगर गुरु मर गया तो फिर जो गुरु गद्दी पे बैठेगा उसको गुरु कर लेते हैं। जैसे आधारमूर्त ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में हुआ, ब्रह्मा मर गया तो किसको गुरु बना के बैठा दिया,
कुमार
का दादी को। बस वो जैसे कहेंगी वैसे ही करेंगे। फिर मुरली चाहे कुछ कहती रहे, मुरली की बात मुरली उठा के अलग रख दो, हमें नहीं मानना। दीदी दादियां जो कहेंगी हम वो मानेंगे, दादा जैसे चलाएंगे हम वैसे कहेंगे, नहीं तो हम मानने वाले नहीं। उसका मतलब गुरुओं ने सत्यानाश पूरा कर दिया। तो जो गुरु गद्दी पे बैठेगा उनको गुरु कर लेते हैं, ये तो एक ही सतगुरु है। क्या है, सुंदर मेला कर दिया जब
सतगुरु मिला,
सतगुरु मिला दलाल, तो दलाल साकार में होगा या निराकार होगा? साकार ही नहीं होंगे तो सदगति कैसे करेंगे? सदगति तो शरीर के साथ कही जाती है, निराकार आत्मा की सदगति थोड़ी कही जाती। तो बोला शांति धाम सुख धाम ले जाने आए हैं, ये तो जगत का बाप है, जगत का टीचर है, जगत का गुरु एक ही है। तुम जानते हो बाप आया है तो बाप से पूरा वर्षा लोग। देह अभिमान अच्छा नहीं है, देही अभिमानी बन बाप को याद करो, फिर तुम्हारी निरोगी काया बन जाएगी। क्या देह अभिमान में रह करके बाप को याद किया तो निरोगी काया नहीं बनेगी। वहां तो पवित्रता सुख शांति संपत्ति सब कुछ है, अथा संपत्ति है। यहाँ देखो पेट के लिए मारामारी कितनी चलती है, क्या धन के लिए क्या क्या चलता है, दूसरों की हत्याएं भी कर देते हैं।
वैसे बाबा पेट के लिए तो नहीं करते, पेटियों के लिए करते हैं। पेट को तो दो रोटी चाहिए, पेटियों के लिए करते हैं हत्याएं।
कमाते किस लिए?
पेट तो दो रोटी खाएगा।
अच्छे रास्ते से या बुरे रास्ते से किस लिए कमाते हैं?
पेटियां भरने के लिए।
पेटियां भरने के लिए सबसे बड़ी पेटी तो ये पेटी हो गया। पेटियां भी किस लिए?
बाबा पेट तो दो रोटी मांगेगा लेकिन पेटियां तो बहुत चाहिए।
पेटियां भी किस लिए? उसका भी तो कोई लक्ष्य चाहिए। बाल बच्चों की जो पेट है वो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी सुखाला बने रहे, इसीलिए तो पेटियां भरते हैं। तो उन बाल बच्चों का भी तो अपना पेट ही हुआ ना। तो बोला यहाँ देखो तो पेट के लिए मारामारी है। क्या इस दुनिया में पेट के लिए बहुत मारामारी है? अगर ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई है ऐसे धर्मगुरु जिनको डर है पता नहीं हमारी आगे की जिंदगी कैसे चलेगी, हमारा तो धंधा ही चौपट हुआ जा रहा है। जब से ये एडवांस शंकर पार्टी निकली है तो उनको भी कौन सा ब्राह्मण कहेंगे? पेटू ब्राह्मण कहेंगे ना। तो बोला पेट के लिए कितनी मारामारी है, विष के लिए मारामारी, क्रोध के लिए, मोह के लिए मारामारी चलती रहती है। बाबा कहते हैं मोह छोड़ो, अंतकाल जो स्त्री सुमेरे मानते नहीं है, फिर भी औरों को याद करते रहते हैं। अपना बच्चा आज नहीं तो दूसरे तन का ले लेते हैं। क्या अपना बच्चा जिनको पैदा नहीं होगा तो दूसरे का बच्चा गोद ले लेंगे। अरे शिव बालक तुम्हारी इतनी सेवा करेंगे जो तुम बात मत पूछो के जैसी सेवा किसी ने 63 जन्म की भी नहीं होगी। इक्कीस जन्म के लिए वरदान देते हैं, बाप भी वर देते हैं, ये समझने की बात है। माताओं के लिए तो बड़ी अच्छी सीजन है। क्या काय की सीजन है बड़ी अच्छी? गोद लेने की। माताओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। स्थूल गोद लेने की बड़ी अच्छी सीजन है या बेहद में गोद लेने की बड़ी अच्छी सीजन है? कोई कोई फिर गोद में लेके बैठ जाएंगे। माताओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। जैसे सर्विस मैं करूंगी मुझे देखा और करने लग पड़ेगी। शक्ति सेना अगर शंख न बजावे तो क्या काम की? क्या
शक्ति शंख न बजावे तो क्या काम किया?
ग्राहकों को पुरुष उनके सामने ले आते हैं कि शिकार करो। पांडवों का काम क्या है? शिकार को पकड़ लाए और शक्तियों के सामने डाल दे कि तुम पकाओ। तुम जब पका दोगे तो खाने के लिए हम आ जाए। ब्राह्मण लोग भी जिज्ञासुओं को काली माता पास ले जाते हैं। ये सभी काली माता शक्ति सेना है। काली के बच्चे काली बलि लेने वाले हो। कितने मीठे मीठे बच्चे हो, 5000 वर्ष बाद मिले हो, याद में रहने से लायक बनेंगे। बाप तो कहते हैं मैं आया हूँ तुमको महारानी बनाने, फिर तुमको जो चाहिए तो बनो महारानी बनो। अच्छा रहा महारानी नहीं बनना चाहते, रानी बनो, पटरानी बनो। पटरानी नहीं बनना चाहते, रानी नहीं बनना चाहते तो क्या बनो?
पटरानी
बनो, दास दासी बनो, चंडाल चंडालिका बनो। मेरे को याद करने से पवित्र बनेंगे, दूसरों को याद करने से और ही जास्ती विकर्म होते रहेंगे। क्या दूसरों को याद करेंगे तो और ही जास्ती पाप कर्म होते रहेंगे, विपरीत कर्म होते रहेंगे। अच्छा ओम शांति।